नरक की तपती आग में बर्फ की गुफाओं में हलचल हो रही थी। वहां हर किसी का प्रवेश संभव नहीं था। उसके बावजूद तीन साए वहां के पहरेदारों की नजरों से छुपकर अंदर प्रवेश कर चुके थे। जल्दी बाहर आओ, वरना कुछ ही देर में हम यहां जम जाएंगे और इनकी तरह हमारी भी आत्माएं यहां फंसकर रह जाएंगी, उनमें से एक साए ने कहा। लेकिन तुम इन्हें आजाद क्यों करवा रहे हो? अगर मालिक को पता चला तो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दूसरे साए ने उसका मुंह बंद कर लिया और बोला, उनका नाम भी मत लो। उनका नाम लेने का मतलब है कि उन्हें याद करना। जिस पल हम उनका नाम लेते हैं, समझ लो उन्हें याद कर रहे हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। लेकिन उनसे तो वैसे भी कुछ नहीं छुपा। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उनकी नज़रों से बचकर इन्हें यहाँ से आज़ाद करवा देंगे? वहां मौजूद तीसरा साया बोला, एक बार हमने इन्हें आज़ाद करवा दिया तो इन्हें नरक के रास्ते से पृथ्वी पर भेज देंगे। उसके बाद ये वहां आज़ाद हो जाएंगे और वहां हमारा काम करेंगे। भले ही उन्हें पता चल जाए, लेकिन इसमें गलती हमारी नहीं, पहरेदारों की मानी जाएगी। सज़ा उन्हें दी जाएगी, क्योंकि नरक के कानून के हिसाब से जो अपना काम ठीक से नहीं करता, उन्हें सज़ा मिलती है। हम सब बुरी आत्माएं हैं और हमारे अंदर की बुराई चाहकर भी नहीं मर सकती। हमारा काम बुराई करना है और हम वही कर रहे हैं, जबकि पहरेदारों का काम इस गुफा की रक्षा करना। हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो सज़ा हमें नहीं, उन्हें दी जाएगी। जैसे ही पहले साए ने पूरी बात पोस्ट की तो उन दोनों ने राहत की सांस ली। पहले उन्हें यहां आने से भी डर लग रहा था, तो वहीं अब वो तीनों बेफिक्र होकर गुफा में आगे बढ़ रहे थे। वहां चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। वहां मूर्तियों के रूप में आत्माएं कैद थीं। उन्होंने तीनों ने काफी कोशिश के बाद पांच मूर्तियां उठा ली और सबकी नज़र से छुपकर वापस बाहर आ गए। बाहर आते ही वो मूर्तियों की जमी बर्फ नरक की गर्मी में अगले ही पल में पिघल गई। अभी भी वो मूर्तियों के रूप में ही थे, लेकिन बोल पा रहे थे। तुमने हमें आज़ाद करवाया है, इसलिए तुम हमारे मालिक हो। कहो क्या आज्ञा है, उनमें से एक मूर्ति ने कहा। तुम्हें यहां से पृथ्वी पर जाना होगा। आगे का काम हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम्हें जहां जाना है, हम वहां का रास्ता तुम्हारे कान में फूंक देते हैं। तुम्हारे कदम अब वहीं उस जगह पर जाकर ही रुकेंगे। उस साए ने उन मूर्तियों से अपनी स्पष्ट कर दी। उसके बाद उन तीनों साए ने उन सभी मूर्तियों के कान में कुछ कहा और वो मूर्तियां वहां से गायब हो गईं। तीनों साए मुस्कुराए और वहां से अदृश्य हो गए। वहीं दूसरी तरफ नरक के सिंहासन पर विराजमान नरक का देव उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। इन्हें लगता है कि इन्होंने उन्हें आज़ाद करवाया है। जल्दी बाहर आ जाओ। नरक के देवता के कहते ही गुफा के पहरेदार वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में लंबे लंबे दंड थे और चेहरे काले नकाबों में छुपे हुए थे। उनके बाहर आते ही नरक के देव ने आदेश देते हुए कहा, जाकर फिर से गुफा की रखवाली करना शुरू कर दो और याद रखना कि अब कोई और मूर्ति वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो हुक्म मालक, पहरेदार एक स्वर में बोले और वहां से अदृश्य होकर वापस गुफा के दरवाजे पर पहरा देने लगे। शाम के 5 बजे तक राजवीर जी की कार कांगरा के मंदिर के आगे थी। वो चारों कार से बाहर निकले और हाथ मुंह धोकर मंदिर के अंदर गए। राजवीर जी उनसे आगे थे, जबकि त्रिशान, जानवी और आकांक्षा उनके पीछे पीछे एक साथ चल रहे थे। तुम भेड़िये मंदिर में भी आ सकते हो क्या? जानवी ने त्रिशान की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे भेड़िया कहना बंद करोगी? हम लोग भी तुम लोगों की तरह इंसान ही हैं, बस कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारे अंदर भेड़िये क्वालिटीज़ हैं। त्रिशान को इस बार उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर त्रिशान? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, आकांक्षा ने हैरानी से कहा। पिशाच और वेयरवुल्फ में बहुत फर्क होता है। पुराने जमाने में लोग काला जादू करते थे और किसी जंगली जानवर से जुड़ी ताकतों को प्राप्त करने जैसे अंधविश्वास को मानते थे। बस इसी चक्कर में कुछ भी खा पी लेते थे पूजा के नाम पर। उसी के चक्कर में उनमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता। साइंस में भी इस बारे में लिखा होता है। ये किसी व्यक्ति भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपने मॉम डैड की बातों को सुनकर इतना ही समझा है। डोंट टेल मी कि ये बातें भी तुमने छुपकर सुनी होगी, जानवी ने कहा। हाँ, त्रिशान ने बालों में हाथ घुमाते हुए जवाब दिया। त्रिशान की बातें जानवी और आकांक्षा की समझ से परे थीं। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजवीर जी उन तीनों के साथ बाहर आए। तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ सिर्फ माता रानी के दर्शन करने आए हो, उसके बाद पहाड़ों पर ट्रेकिंग के लिए जाओगे। दर्शन तो हो गए हैं, अब तुम जा सकते हो, राजवीर जी ने कड़क आवाज में कहा। त्रिशान ने हामी भरी और अपने कदम दूसरी तरफ ले लिए। उसके मुड़ते ही राजवीर जी ने आकांक्षा और जानवी से कहा, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। राजपुरोहित जी हमें यहाँ से कुछ दूर बनी कुटिया में मिलेंगे। हमें वहां तक चलकर जाना होगा। वो ज्यादा दूरी पर नहीं है, बस 15 मिनट लगेंगे, राजवीर जी ने कहा। और उन दोनों के साथ राजपुरोहित जी की कुटिया की तरफ बढ़ गए। वो जल्दी जल्दी चल रहे थे, जबकि उनके पीछे आकांक्षा और जानवी भी बातें करती हुई आ रही थी। अक्षु, मुझे ऐसे क्यों कर लग रहा है कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है? कहीं ये वो तो नहीं? जानवी ने पीछे देखकर बोला। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो मुझे नॉर्मल नहीं लगता। जरूर उस पर किसी चुड़ैल का साया है, आकांक्षा ने हंसते हुए जवाब दिया। चुड़ैल का साया? कभी कभी तो मुझे साक्षात चुड़ैल ही लगता है, वो भी मेल चुड़ैल। लेकिन वो चुड़ैल कैसे हो सकता है? वो तो भेड़िया है ना।
बोलते हुए जानवी ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से पीछे देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक त्रिशान नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो लोग वहां पहुंच चुके थे और राज पुरोहित जी का इंतजार करते हुए वहीं बाहर बाकी लोगों के साथ बैठे थे। वहीं उनसे कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच त्रिशान दूर से उन लोगों को देख रहा था। क्रमशः